میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کا شعبہ تعلیم جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شعبہ، اسی شعبے کے تحت الحمدللہ اس وقت ٹیچرز اجتماع کا سلسلہ رکھا گیا ہے، اور اس وقت میں ملتان فیضان مدینہ سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا عمدہ اہتمام فرمایا۔ آپ نے جلیل القدر محدث، حدیث کے امام، بہت زبردست عالم تھے، حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد تھے، ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استاد اور نگران مقرر کیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام سہل بھی اولاد کی دیکھ بھال پر مامور تھے، اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت زیادہ متوجہ رہا کرتے تھے، کافی آپ کی اس معاملے میں دلچسپی تھی کہ اولاد کے تعلق سے ڈسیجن لینا کہ میں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے میں اس کو کس کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جن کے سپرد کیا تھا، یہ بہت زبردست عالم تھے، بہت زبردست استاد تھے، بڑے بزرگ تھے۔ اب انہوں نے کرنے کو تو کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک خط لکھا اور اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، ان کو ترک صحبت کی طرف توجہ دلائیں۔ صحبت یعنی آپس کی گیدرنگ، دوستیاں، یاریاں، اس کے تعلق سے آپ نے توجہ دلائی کہ ان کو اس سے بچایا گیا ہے، میری اولاد کو، کہ یہ غفلت پیدا کرتی ہے، انہیں کم ہنسنے کی تربیت دی جائے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ سے میرے بچے ایک اور بات یہ بھی سیکھیں کہ انہیں گانے باجے کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو، کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ فرماتے میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کا جدول، اسکیجول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قراءت بھی کریں، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو دیگر ان کی ایسی مشق اور ایسی ایکٹیویٹیز، وہ میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ جس سے ان کے اندر ہمت حوصلہ بھی رہے، پھر دوپہر کا آرام بھی کریں، کہ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہا گیا، کیونکہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، دوپہر کا جو آرام ہوتا ہے۔ تو ٹیچر کا انتخاب پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اور ایسے ٹیچرز یعنی ایسے استاد، ایسے اساتذہ کرام جو اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی اپنا کردار رکھتے تھے، ان کی دستیابی ہوتی تھی، اور والدین بھی ایسا استاد ڈھونڈا کرتے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ تو اس نے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنے بڑے وقت کے، اتنے بڑے اسلام کے سب سے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، इन्होंने अपने बेटे के लिए जिस चीज का इंतखाब किया वो एक अच्छा उस्ताद है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस्ताद की तालीम और तरबियत बच्चों पर किस कदर असरअंदाज होती है। आज टीचर इज्तिमा है और टीचर इज्तिमा रखने की अहमियत भी यही है। जो टीचर्स जमा किए गए हैं मुल्क और बैरून मुल्क, टीचर्स जमा किए गए हैं, उस्ताद जमा किए गए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के ताल्लुक से स्पेशली अगर मैं बयान करूं, तो वो जो जमा किए गए इसकी खसूसियत यही है कि ताकि हम इस बात को समझें कि टीचर की अहमियत क्या है, खसूसियत क्या है और इनका मकाम क्या है और ये कितना माशरे में रोल प्ले कर सकते हैं। तो इससे के लिए मैंने आपको बुनियादी तौर पर एक बात बताई कि ऐसा टीचर, ऐसा उस्ताद जो बच्चे की ऐसी तालीम और तरबियत कर सके जिसके इसके अखलाक किरदार दुरुस्त हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूं। रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, यानी आप सिखाने वाले बनाकर भेजे गए हैं, आप सिखाते थे। एक उस्ताद को चाहिए, एक टीचर को चाहिए कि जब एक मुसलमान टीचर, डेफिनेटली जब आप मनसब टीचिंग पर आते हैं, एक मनसब तदरीस पर आते हैं, आप पढ़ाने के लिए आते हैं और कौम का मुस्तकबिल आपके सिपुर्द किया जाता है, टीचर के सिपुर्द कौम का मुस्तकबिल किया जाता है। यानी लोग अपना पैसा किसी के हवाले करते हैं, कोई अपना घर किसी के हवाले करता है, कोई अपनी कार किसी के हवाले करता है, आप वो लोग हैं कि लोग अपनी औलाद आपके हवाले करते हैं। आप सोचिए, मदा मोटरसाइकिल देता है, कहता है दादा संभाल के चलाना। कभी आपने भी किसी को मोटरसाइकिल दी होगी तो आप कहते हैं यार जरा संभाल के चलाना, गिर भी ना जाए, लगभग ना जाए। गाड़ी तो देते हुए सांस फूल जाती है कि भाई ठोक वोक देगा तो, है ना, या जरा कार है जरा संभाल के चलाना। घर किसी को देते आर्जी तौर पर भी अगर किसी को देते या जरा संभल के रहिएगा तो टूट फूट ना जाए। लेकिन एक शख्स आपको अपनी औलाद देता है, अपना फल आपके हवाले करता है, अपना जिगर का टुकड़ा आपके हवाले करता है, और अगर मैं मुल्क की सत्ता की बात करूं तो मुल्क का मुस्तकबिल आपके हवाले करता है ना। तलबा ये मुस्तकबिल के और मुल्क को कौम के मेमार हुआ करते हैं और उसको बनाने की जिम्मेदारी आपकी, यानी किसी के हाथ में घर बनाने का दिया जाए तो उसको कितना चेक किया जाता है कि अगर दरो दीवार उल्टी सीधी कर देगा तो घर में रहेंगे कैसे। लोग घर बनाने के लिए इतना इंतखाब करते हैं, लोग दीगर चीजें बनाने के इंतखाब करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए एक से एक इंतखाब करते हैं। आपके पास कौम का मुस्तकबिल बनाने के लिए बच्चा दिया जाता है, ये आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है। टीचर ये आम इंसान यानी आम आदमी नहीं है, माशरे का आम फर्द नहीं है। और हमारे यहां आज भी टीचर के लिए इज्जत बाकी है। इस कम अज कम मैं अपने मुल्क की तो बात करूं, अगरचे कई जगहों पर यह भी मुसीबत आई हुई है कि हमारे यहाँ टीचर वादों का स्टूडेंट से डर रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही यूनियन बनाकर टीचरों को धमकाते रहते हैं। लेकिन फिर भी गनीमत और ममालिक के मुकाबले में कहीं अब भी हमारे यहाँ टीचर्स की किसी कदर इज्जत और मोहब्बत का मामला होता है। हमारे जैसे डॉक्टर की इज्जत है, इस तरह दीगर एक जो शोबे होते हैं जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, इस तरह हमारी सोसाइटी में टीचर्स की भी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। तो मुअल्लिम सिखाने वाला बनना, तो इसके लिए ये बात जो मैं आज आप तक कोशिश कर रहा हूं डिलीवर करने की, जो दावत इस्लामी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की तहरीक है, दावत इस्लामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने की तहरीक है, दावत इस्लामी इस माशरे में सुन्नतों के फूल खिलाने की तहरीक है। और ये बात कोई इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं कि जहां भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अल्हम्दुलिल्लाह पर अमल हो रहा होगा वहां पर अच्छाई आपको खुल खुल के नजर आएगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ये खूबी है और हम सबको इस सीरत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए कि खुद कुरान करीम ने हमें यह दावत दी है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पैरवी है। यानी हर उस्ताद के लिए, हर टीचर के लिए जरूरी है कि वो अपने स्टूडेंट के जहन में ये बात बिठा दे कि एक मुसलमान का जो रोल मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें इनकी पैरवी करनी है, हमें इनको फॉलो करना है, हमें इनकी तालीमात पर अमल करना है। और उसके लिए एक उस्ताद, एक टीचर अपने आप को एज ए प्रैक्टिकल पेश करता है। लिहाजा मैं अभी जो आपको कहने जा रहा हूं इसमें मेरे लिए वो टीचर भी हैं जिन्हें हम पेरेंट्स का नाम देते हैं, मेरे नजदीक वो टीचर भी हैं जिन्हें हम पेरेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि मेरे नजदीक पेरेंट्स ये सबसे फर्स्ट टीचर है मेल एंड फीमेल अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। बच्चे तो बाद में इदारों में जाते हैं, फिर प्री प्राइमरी में जाते हैं, प्राइमरी में जाते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे घर में ही शुरू से अच्छी तालीम और तरबियत पालें और अगर इदारे में जाकर इन्हें खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज नजर आएगी तो ऑटोमेटिकली वो उसको रिएक्ट करेंगे कि मैंने सीखा कुछ और था घर में और यहां बाहर सिखाया कुछ और जा रहा है। तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरा मशवरा है आज शामिल कर लिया जाए। अच्छा, वो टीचर्स जो आज इस इज्तिमा में शामिल हैं, शायद इनमें बड़ी तादाद वो होगी जो खुद एक वालिद होंगे। इदारे में आप एक टीचर के तौर पर पहचाने जाते हैं लेकिन घर में आप वालिद के तौर पर पहचाने जाते हैं। घर में इंसान की ही पोजीशन है, बाहर वो मिनिस्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, जज हो, ऑफिसर हो, दुनिया उसको सेठ कहती हो, घर में आने के बाद उसकी हैसियत एक ही जैसी होती है, या तो वो बाप है या वो भाई है या वो शौहर है या वो बेटा है। कभी शौहर अगर ऑफिसर भी है तो घर में आकर बीवी ये नहीं कहती कि सर आइए, कभी नहीं होगा ना। आप अगर टीचर साहब घर पे जाएंगे तो बेटा ये बोलेगा कि सर कैसे हैं आप, ठीक है अब्बू, अब्बू बोलेगा। और अगर बीवी बा अखलाक हुई तो बहुत तमीज से बोलेगी कि आइए, वरना तो नसीब हमारे जो भी होगा। तो इसी तरह चाहे मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, जो भी है घर में एक हैसियत है हर इंसान की, और वो यही है जो मैंने आपको बयान की है। इमाम साहब भी घर पे जाएंगे तो बच्चा ये नहीं बोलेगा आइए इमाम साहब, घर में हमारी एक पोजीशन है। और ये बात याद रखिए कि ये पोजीशन हर एक के लिए, मैं जनरल बात कर रहा हूं, लिहाजा जो मैं इस वक्त आपको बयान करने जा रहा हूं समझिए कि मेरे बयान का ये मुकदमा है जो मैं एक थोड़ा सा माइंड मेकिंग के तौर पर चल रहा हूं कि हम सब के लिए एज ए पेरेंट्स भी एज ए टीचर भी, हम सबके लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है अखलाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना। क्योंकि आप तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, आप जहन बदलने की कोशिश करते हैं, और जो तब्दीली मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लेकर आई, ना इससे पहले कभी आई ना इसकी बात कभी आएगा, वो किरदार है मुबारक, अखलाक मुबारक। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, और मौरिखीन सीरत लिखने वाले ये बात वाज़े तौर पर लिखते हैं कि रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का बड़ा हिस्सा अपने सहाबा कराम की तरबियत में गुजरा है। अब तरबियत फरमाया करते थे अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की, खाने के ताल्लुक से, पीने के ताल्लुक से, बोलने के ताल्लुक से, इबादात के ताल्लुक से, माशरती जिंदगी, फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ, हर तरह की जिंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को संवारने पर आपने तरबियत फरमाई है। लिहाजा ये बात हर एक के लिए समझना जरूरी है। लिहाजा मैं अभी आपके सामने वन बाय वन, अगर याद कर सके तो याद कर लें, लिख सके तो लिख लें, वन बाय वन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात मुबारक की कुछ झलकियां बयान करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब के सब, और जो भी माशरे में इस तरह के असर रखता है या जिसके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन वो मस्जिद के इमाम ही क्यों ना हो, कि मस्जिद के इमाम भी कुछ ना कुछ पढ़ाने का और सिखाने का सिलसिला रखते हैं, तो हर एक के लिए जो इस वक्त मैं बयान करने जा रहा हूं वो हम सबके रोल मॉडल है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चुनाचे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अब झलकियां सुनते चले जाएं। अगर मैं हर चीज में बहुत डिटेल में जाऊंगा बयान पूरा नहीं हो सकेगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि वन बाय वन बयान करता चला जाऊं और आप सुनते रहें, मैं भी पढ़ता रहूं, सुनता रहूं, और हम गौर करते रहें कि यार मुझ में ये आदत है या नहीं है। आज हम इंशाल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करने की नीयत लेकर खड़े होंगे इंशाल्लाह। और एक اگر یہ عمل نصیب ہو گیا نا یقین مانے زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. دیکھیں آپ ہو میں ہوں ٹیچر ہیں یا ہے یا نہیں ہے, مرنا ہر ایک نے ہے. قبر میں مصطفیٰ کریم کی پہچان, قیامت میں مصطفیٰ کریم کی شفاعت لے کر ہمیں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونا ہے. ایک مسلمان کا مین گول یہ ہے, مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جائے, ٹھیک ہے, قبر کے سوالات کے جوابات دے, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے, پیارے مصطفیٰ کریم کی شفاعت نصیب ہو اور اللہ پاک اسے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے, اور اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے جو ایک بار جنت میں جائے گا تو پھر نکالا ہی نہیں جائے گا, اور آقا کے قدموں میں جگہ مل گئی تو پھر تو کیا چاہیے, مدینہ مدینہ ہو گیا. یہ مین ہے, اب اس پر اپنی زندگی بنانی ہوتی ہے. یہ مین ہے کیونکہ یہ موت کبھی بھی آئے گی نا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پوری کر لیں, آپ اپنا پروفیشن پورا کر لیں, آپ اپنا ٹائم پورا کر لیں, یہ کوئی نیسسری نہیں ہے. ہر آدمی بوڑھا نہیں ہوتا, جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے. ہر کوئی جوان نہیں ہوتا, بچپن میں بھی موت آ جاتی ہے. چھوڑا بڑا بھی نہیں ہوتا, پیدا ہوتے ہی موت آ جاتی ہے. تو ہمیں تیاری آخرت کی کرنی ہے, اور اس کے لیے دنیا سنوارنی ہو یا قبر سنوارنی ہو یا آخرت سنوارنی ہو, جو مین ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے. یاد اب سنتے چلے جائیے کیا میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کی سیرت اور آپ کے اخلاق کریمہ کتنے پیارے ہوا کرتے تھے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے, ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو. مینس ہمیں سکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ وہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے اور اپنی سکسیز سٹوری بنانا چاہتے تو اس کو اس کو فالو کرنا پڑے گا, اس کو فالو کرنا پڑے گا. نمبر دو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے تھے, ساتھ والوں کا حقوق کا لحاظ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ ٹیچر کے لیے اتنی امپورٹنٹ بات میں نے کی ہے, اتنی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سم ٹائم ٹیچر کا بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں بھی تقسیم ہو جاتے ہیں. کہ وہ پانچ دس اسٹوڈنٹ ہی ہوتے وہ بھی سمجھتے ہیں سر تو انہیں پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں, سر انہیں کو زیادہ قریب کر رہے ہیں, سر انہیں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں, سر انہیں کے گھر میں جا رہے ہیں, سر انہیں کو گھر پہ بلا رہے ہیں, سر کی ان پر شفقت زیادہ ہے, فلاں یہ 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 نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ٹیچر ہر دل عزیز ٹیچر بننا چاہتا ہے, ہر دل عزیز استاد بننا چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ میرے تمام اسٹوڈنٹ میری مجھ سے محبت کرے, مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں, تو اسے چاہیے کہ اپنے تمام اسٹوڈنٹ پر یکساں شفقت و محبت کا اظہار کرے, اور ہر اسٹوڈنٹ یہ سمجھے میرے ٹیچر میرے استاد مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے. یہ ہر ایک پر یوں سمجھیے کہ بیلنس انداز میں توجہ دینے سے آئے گا, ورنہ بعضوں پر توجہ رہتی ہے بعضوں پر رہتی نہیں ہے. بعض کو تو ہم یہ کہہ کر ہی فارغ کر دیتے تم کسی کام کے نہیں ہو تم تو جاؤ, وہ سمجھ جاتا ہے سر کے کام کا ہی نہیں ہو, استاد صاحب کے ٹیچر کے کام کا ہی نہیں ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ٹیچر کا کام ہے. آپ کیسے اس کو ڈیڈ ووڈ بنا دیتے ہیں, ایسے کیسے وہ ڈیڈ ووڈ ہو جائے گا, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہو. سطح سے وہ صلاحیت ہو جو شاید اس کے قوم اور ملت و دین کے لیے بہتر ہو جائے. لہذا سب کا شفقت رکھنا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کتنی خوبصورت میرے آقا کی سیرت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک آپ تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے. اللہ اکبر کیا سیرت ہے. ایک اور بات یہاں پر آپ یہ سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے آپ مصافحہ فرماتے ہاتھ ملاتے جسے ہم شیک ہینڈ کہتے ہیں, ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں آپ پہل نہ فرماتے, یعنی جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا میرے آقا اسے ہاتھ چھڑوایا نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی شخص آپ کے کان مبارک میں کوئی بات کرتا جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی میرے آقا اسے اپنے کان مبارک ہٹایا نہیں کرتے تھے. یہ تھے میرے آقا معلم, کان مبارک نہیں ہٹاتے تھے اسے, سنتے تھے. اچھا اب میں اپنے ٹیچر سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اسٹوڈینٹس कॉरिडोर के बाहर जब क्लासें खत्म हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स वगैरह खड़े होते हैं, जब बाद वक्त कहीं कहीं टीचर्स गुजर रहे होते हैं, हाथ में रजिस्टर्ड होते हैं, बुक्स होती हैं, टीचर जा रहे होते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। अच्छा वो देख देख कर स्टूडेंट थोड़े पीछे हटे, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, वो सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं। अच्छा यही सर जब आगे जाते हैं ना तो कुछ स्टूडेंट किसी टीचर के साथ खड़े हुए होते हैं, ये शायद आपको याद होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर के साथ खड़े हुए होते हैं और सर के साथ बात कर रहे होते हैं। क्या बात है कि एक को देखकर स्टूडेंट साइड पकड़ रहे हैं और एक को देखकर स्टूडेंट घेर के खड़े हुए हैं। आखिर उस टीचर में से क्या खूबी है कि स्टूडेंट उसे दूर हटने के बजाय स्टूडेंट उसके पास आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये वो टीचर होंगे जो मुस्कुराते होंगे, ये वो टीचर होंगे जो नरमी का मुजाहरा करते होंगे, ये वो टीचर होंगे जो क्लास में डांट डपट नहीं करते होंगे, ये वो टीचर होंगे जो स्टूडेंट को अलग से टाइम भी देते होंगे, ये वो टीचर होंगे जिनके अखलाक किरदार से स्टूडेंट को मजा आता होगा कि इनके पास खड़े रहो तो डांट नहीं मिलेगी, प्यार मिलेगा। यानी एक पानी कुएं में होता है जिसको निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक पानी बादलों में होता है जो आकर खुद बरस कर प्यासों को सैराब करता है। और ये गौर करने की बात है, किसी मुल्क के अंदर एक वर्कशॉप हुई ट्रेनिंग, और दुनिया भर से कुछ स्टूडेंट्स जमा किए गए और बाकायदा एक फॉरेन लेवल पर एक वर्कशॉप अरेंज किया गया कि टीचर्स इनकी ट्रेनिंग करेंगे, और उसका मौजू अखला क्या दी था कि आपके रवैये का लोगों पर क्या असर पड़ता है, रवैये से रिलेटेड था, एटीट्यूड से रिलेटेड था, आपके एटिकेट से रिलेटेड था, आपके मैनर से रिलेटेड था, आपके बर्ताव से रिलेटेड था टॉपिक ना। तो अब जो स्टूडेंट्स जमा हुए थे, बड़े स्टूडेंट्स थे, वो एक क्लास रूम में जमा हो गए, तो अचानक टीचर क्लास में आए ना, तो अब जब टीचर था सन्नाटा हो गया, बिल्कुल साइलेंट गॉन में चले गए। अब एक स्टूडेंट के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बाकी थी, वो भी बेचारा लपेटने की कोशिश कर रहा था, डेफिनेटली बातचीत चल रही थी क्लास के अंदर। तो जैसे ही टीचर आ गए क्लास के अंदर तो वो एक स्टूडेंट को थोड़ा अपने आप को वो उस कंडीशन में लाने में टाइम लग गया, तो वो स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अच्छा जैसे ही टीचर ने देखा ना मुस्कुराहट थी, क्या आप क्यों मुस्कुरा रहे, व्हाई आर यू स्माइलिंग, और वो सीरियस हो गया, सर आई एम नॉट, नहीं नहीं आप मुस्कुरा रहे थे सर, वो ये कोई तरीका है मुस्कुरा रहे आप क्लास के अंदर, आपके डिसिप्लिन नहीं है, एटिकेट्स नहीं है आपके अंदर सर, वो बात आप सर सर कर रहे, बदतमीजी कर रहे, मैं आपको समझा रहा हूं समझ नहीं रहे, एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है सर, वो सॉरी वाई, क्या मतलब सॉरी, आपको पढ़ना आता है, आप सीखने के लिए आए, जाए जाए किताबें लें और गाड़ी लें, ट्रेन कराएं, घर जाएं, आप नहीं सीख सकते, ये कोई तरीका है सीखने का। अब यू वो टीचर साहब तो निकल गए हाथ से, और वो बेचारा लड़का सहम गया, अब करूं तो क्या करूं। देखिए टीचर साहब जो थे ना वो बंद नहीं हाथ में आ रहे थे, क्या क्या आप उठे स्टैंड अप, वो घबरा गया, वो खड़ा हो गया, कमान आउट, क्लास से बाहर निकले आप क्लास में बैठेंगे बदतमीज, चलें बाहर जाएं। और वो करता क्या, और सारे क्लास में बिल्कुल जैसे कि सांप सूंघ गया सबको, तो हो क्या रहा है ये, वो बेचारा उठा रजिस्टर लिया क्लास के बाहर गया, बेंच रखा हुआ था क्लास के बाहर, जाकर वो चुपचाप वहां बैठ गया। अब टीचर जो बकिया स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ उसने ध्यान दिया और अपना तारुफ बयान किया कि मैं फला हूँ फला हूँ फला जगह से आया हूँ, ये वो वगैरह, आपको ये कोर्सेस मुझे करवाने हैं। ये कहते उन्होंने ड्रॉ से एक फॉर्म निकाला और एक फॉर्म निकाल कर अपने तमाम स्टूडेंट्स को तकसीम किया कि ये सबको बांट दें, सबके टेबल पर जैसे कि क्वेश्चन पेपर होता है वो रख दिया गया। उस क्वेश्चन पेपर में 5 सवाल थे। नंबर 1, अपने उस्ताद के अखलाक के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं। नंबर 2, इनके पढ़ाने और समझाने का तरीका कैसा है। नंबर 3, कि अगर आप उस्ताद से कोई मुखालिफत करते हैं तो उनका क्या रवैया होता है। नंबर 4, कि अगर इदारे के बाहर आप उस्ताद से मिलेंगे तो क्या आपको खुशी होगी। और नंबर 5, क्या दोबारा इसे पढ़ना चाहेंगे। अब नीचे ऑप्शंस लिखे हुए थे, मिसाल के तौर पर अच्छा, मुनासिब, कमजोर, ये ऑप्शन लिखे हुए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब स्टूडेंट्स को वो फॉर्म फिल करना था, एग्जामिनेशन क्वेश्चन फॉर्म था, जो जो सवाल था उसके आगे ये 3 ऑप्शंस थे, ऑप्शन को उन्होंने करके बंद करके देना था। टीचर ने कहा आप में से हर एक ने अपना नाम जरूर लिखना है, और नाम लिखकर देना था। थोड़ी देर के बाद भरकर सारे पेपर आ गए। 5 मिनट तक उसी मौजू पर थोड़ा लेक्चर दिया ना टीचर ने। लेक्चर देते देते टीचर ने कहा वो एक काम करते, वो बेचारे एक स्टूडेंट तो हमारे बाहर हैं, वो तो उनका तो बहुत लॉस हो रहा होगा। वो बाहर गए और बाहर जाकर स्टूडेंट के पास जाकर कहा बेटा सॉरी, उस कह दिया मैंने आपको, कोई भी मुझे नहीं कहना चाहिए था, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज कम एंड ज्वाइन क्लास, कर करके पकड़ कर मिन्नत समाजत करके फिर क्लास में आए। क्लास में आकर स्टूडेंट को कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वेरी सॉरी। ओ बाप रे बाप, जो उसने माजरत की और माफ़ियाँ मांगी और जो इसने नरमी प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया, स्टूडेंट भी देखते रह गए। कहा अच्छा इनका फॉर्म रह गया है, चलो दोबारा इनको भी फॉर्म दे देते, ये भी एक फॉर्म फिल कर देते, चलो अब इनको क्या देना, आप सबको दे देते एक बार फिर, आप सब एक बार फिर भर के दो। तो सबको दोबारा फॉर्म दे दिए, और फॉर्म देने के बाद सबको कहा दोबारा भर के दो। अब जो दोबारा भरकर फॉर्म आया, तो जो पहले जो फॉर्म भरकर आया था उसमें तो यही था कि इससे दोबारा नहीं पढ़ना। उसका जो नतीजा निकला था वो क्या था कि इनसे दोबारा नहीं पढ़ना। और जो सेकंड टाइम जब इन्होंने अपना वो फॉर्म दिया और जब ये आया, उसके बाद जब उन्होंने कंपेयर किया तो उसमें लिखा था कि इनसे पढ़ लेना चाहिए। अब टीचर कहने लगे कि वेरी सॉरी टू से, मेरा जो आपके साथ जो लेक्चर था वो प्रैक्टिकल लेक्चर था, मैं आपको एटीट्यूड का असर प्रैक्टिकल दिखाना चाहता था। मैं वो करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि वो मैं ही हूं कि जिसके बारे में आपने पहले ये लिखा कि इससे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा रवैया मुनासिब नहीं था। लेकिन जब मेरा रवैया मुनासिब हो गया तो आप समझ गए कि यार इसी आदमी से पढ़ना चाहिए। यह है रवैये का फर्क, कि आपका रवैया अच्छा होगा तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका रवैया बुरा होगा तो लोग आपसे नफरत करेंगे। बाकायदा प्रैक्टिकल अंदाज में इस शख्स ने वर्कशॉप लगाया, और ये अमली तौर पर होता है। बाद वक्त बहुत सारी चीजें ना अमली तौर पर बड़ी मुफीद होती हैं, कि अगर आप किसी को डायरेक्ट समझाएं तो ठीक है, लेकिन उसको आप उसकी काम का प्रैक्टिकल कराते हैं ना, तो प्रैक्टिकल दिमाग में बैठ जाता है। हमारे अमूमन साइंस के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करवाते हैं, कई चीजें हम इसकी थ्योरी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी की भी हम थ्योरी पढ़ाते हैं, मगर थ्योरी पढ़वाने के बाद केमिस्ट्री की भी थ्योरी होती है, पढ़ाने के बाद फिर हम उसे लेबोरेटरी का रास्ता दिखाते हैं, वो अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल करते हैं तो बात इनके दिमाग में बैठ जाती है। तो इस टीचर ने प्रैक्टिकल करके बताया कि रवैयों का, एटीट्यूड का, बर्ताव का लोगों के जहन पर, दिल पर, दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जितने भी मेरे टीचर्स हैं इन सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। इवन कि मैं तमाम पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, क्योंकि पेरेंट्स को भी एज ए टीचर ही मैं ट्रीट कर रहा हूं इस वक्त, कि अगर आपका रवैया अच्छा है तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे और आपके स्टूडेंट आपके हैं, और अगर आपका रवैया सही नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर रवैया अल्लाह और उसके रसूल के लिए अच्छा होना चाहिए, अखलाक को हमें अख्तियार करना चाहिए। हमें पैसे कमाने के लिए, जॉब के लिए अपने रवैया को अच्छा नहीं करना, हमने अपना रवैया अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए अच्छा करना है। हमें रवैया इसलिए अच्छा करना है कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना है। हमें रवैया इससे अच्छा करना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी को पसंद फरमाया, उसने अखलाक की तारीफ फरमाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए कि इरशाद फरमाया, बंदा अपने हुस्न अखलाक की वजह से, गौर कीजिए, बंदा अपने हुस्न अखलाक की वजह से रात को इबादत करने वाले और सख्त गर्मी में किसी को पानी पिलाने वाले के दर्जे को पा लेता है, हुस्न अखलाक की वजह से। इतने इंपॉर्टेंट है हुस्न अखलाक, हुस्न अखलाक में बहुत कुछ आ जाता है। वर्ड है हुस्न अखलाक, जैसा मैनर्स एक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर हम इसको हम खोलें तो उसके अंदर बहुत सारी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस आ जाती हैं, आपके फैमिली के अंदर, आपके सोशल एक्टिविटीज के अंदर, आपके पड़ोसियों के साथ आपके क्या क्या अंदाज हैं, आपकी कोलिग्स के साथ आपके क्या क्या अंदाज हैं, आपके टीचर्स के साथ, आपके घर में पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ क्या अंदाज हैं, इन तमाम को आप मैनर्स में ले लेते हैं और हर एक चीज को अलग अलग आप लिखते हैं। हुस्न अखलाक लफ्ज है, अखलाक करीमा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाए, ये एक वो खुद फरमाते कि मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। مکارم اخلاق کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. تو ایک استاد کو، ایک ٹیچر کو با اخلاق ہونا چاہیے، اور اخلاق والا جو ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں وہ نمازی بھی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، وہ نیک ہوگا، اس کے کردار سے حیا چھلکتی ہوگی. بد اخلاقی والا معاملہ نہیں ہوگا. بد اخلاقی کے تعلق سے میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت فضیل بن ایاز علیہ الرحمان نے کیا خوب فرمایا، بڑی توجہ سے سنیے گا. سیدنا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اچھے اخلاق والا فاسق میرا ساتھی رفیق سفر ہو، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بد اخلاق عابد میرا رفیق سفر ہو. ایسا بد اخلاق لوگوں سے آپ دور بھاگتے تھے، اور یہ بد اخلاقی یہاں آتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں با اخلاق بنائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا صدقہ عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و خوش اخلاقی ہر ایک کے لیے عام تھی. سب پر اپنی سخاوت کا بھی اظہار فرماتے تھے اور اپنے اخلاق کا بھی اظہار فرماتے تھے. میری درخواست ہے ٹیچر سے، استادوں سے، کہ اپنے اندر ہمیں سخاوت بھی پیدا کرنی چاہیے. مزہ نہ آئے تو بتائیے گا، کچھ نہ کرے تو کم از کم مسواک کے اپنے ساتھ رکھ لے، ایک ڈبا اپنے شاگرد کو تحفے میں، مسواک کے تحفے میں دے دیا کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو تحفہ دینے کا انداز بھی مل جائے گا، عادت بھی ہو جائے گی. بکلیٹ دے دیں مقتدۃ المدینہ کی، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس ہیں جیب میں رکھ سکتے ہیں آپ، پاکٹ سائز رسالے ہیں، یہ دے دیں، تحفہ دیا کریں. ایک ٹیچر کہیں جا رہے تھے، پروفیسر تھے، پروفیسر صاحب کہیں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا تو پروفیسر صاحب نے مسجد میں جا کر نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد جب پروفیسر صاحب واپس نکل رہے تھے، اس راستے میں تھا کہیں جا رہے تھے، تو امام صاحب پروفیسر صاحب کے پیچھے گئے اور پروفیسر صاحب سے کہا کہ سر، پروفیسر صاحب کھڑے ہو گئے، امام صاحب سر کہہ رہے ہیں، سر آپ نے مجھے پہچانا، برخوردار کون ہو آپ؟ سر میں آپ کی فلاں کلاس کا فلاں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا میں ہی فلاں. اچھا ان کو نہیں پہچان سکے، وہ داڑھی اور وہ تو امام بن چکے تھے مسجد کے. اچھا میرے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا اب تھوڑی باتیں ہو رہی ہیں، سر آپ کو پتا ہے میں امام کیسے بنا یا میں امام کیوں بنا؟ اب سنیے، سر آپ نے ایک دفعہ کلاس میں نماز کا سوال کیا تھا اور میں نے اس سوال کا جواب صحیح دے دیا، آپ نے اپنی گھڑی اتار کر مجھے تحفے میں دے دی. اتنا میں آپ کے اس انداز سے امپریس ہوا کہ میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں مسجد کا امام بنوں گا. سر وہ گھڑی آج بھی میرے ہاتھ میں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھڑی تحفے میں دے دو، میں گھڑی تحفے میں دوں گا، میری اپنی گھڑیاں، میری اپنی گھڑیوں کا کیا ہوگا. تو چلو انہوں نے دے دی تحفے میں، آپ گھڑی نہیں دے سکتے تو میں کہہ رہا آپ مسواک تحفے میں دے کہ فیضان مسواک. اللہ کرے میرا اساتذہ بھی مسواک رکھنا شروع کر دیں، میرے ٹیچر بھی مسواک رکھنا شروع کر دیں. مسواک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی بہت ہی پیاری نصیحت ہے اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو دینا شروع کریں کہ بیٹا مسواک کیا کرو. اچھے اچھے اسٹوڈنٹوں کے دانت بگڑے ہوئے ہیں، دانت خراب ہیں، پیلے ہیں، عجیب حالت ہے اسٹوڈنٹ کا، بےچارے مسکراتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ دانت کھل جائے گا، بھانڈا پھوٹ جائے گا، دانت نظر آ جائیں گے. تو ان کو مسواک دیں، مسواک کی سنت بتائیں کہ مسواک کی سنت یہ ہے. اور میں آپ سب کو عرض کروں، تمام دیکھنے سننے والوں کو، کہ مسواک کا استعمال کریں. الحمدللہ مسواک وہ آقا کی سنت ہے کہ اس کے عادی کو، یعنی جو مستقل مسواک کا عادی ہوگا، مرتے وقت اللہ پاک اسے کلیمہ نصیب فرمائے گا. ٹیچرز رکھنا شروع کر دیں گے مسواک، چلو یہاں جیب نہیں ہے تو جہاں رکھ سکتے ہیں وہاں رکھیں، رکھی تو جا سکتی ہے. یہ گلاس تقریباً ٹیچرز کے گلاسز ہوتے ہیں، تو آپ گلاسز بھی تو رکھتے ہیں نا کور کے ساتھ، پرس رکھتے ہیں، دو دو موبائل رکھتے ہیں، زیادہ استعمال دو تو پھر وہ کیا پاور بینک وہ بھی رکھتے ہیں، پھر ایئرپورٹ بھی رکھتے ہیں، اتنا سب کچھ جیب میں رکھ ہی رہے تو میرے آقا کی سنت مسواک بھی جیب میں آئی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. میرے دیکھیے دیکھ میں یہاں ہوں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، تو آپ کو میں یہی باتیں بتاؤں گا، کیا بتاؤں گا میں، ٹیچنگ کیسے کرنی یہ تو بتا رہے ذرا، کیریکولم کیسے پڑھانا یہ تو بتا رہے ذرا. یہ ضرور کہہ سکتا ہوں میں کہ ہمارے یہاں ٹیچر کیریکولم پر محنت کرتے ہیں کہ مجھے پڑھانا کیا ہے، چاہے وہ اکاؤنٹنگ کے ٹیچر ہوں، فزکس کے ٹیچر ہوں، یا وہ کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر ہوں. کوشش یہ ہے کہ میرا جو پڑھانے کا جو میرا جو سلیبس ہے یا میرے جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے،
वो मैं प्रॉपरली डिलीवर करने में कामयाब हो जाऊं, ये जस्ट एक थॉट होती है मेरी। इसमें आपको मशवरा ये है कि इस वक्त, और इस पर टीचर्स भी मेरे साथ शायद मुत्तफिक होंगे कि मेरी बात हुई है टीचर से, कि टीचर्स का भी ये कहना है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना है, वेरी सॉरी टू से सोसाइटी का भी ये कहना है कि हमारे यहाँ एजुकेशन तो है, हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। इसलिए तरबियत के लिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स का अपना इस तरह का मिजाज होना जरूरी है कि जो अपने स्टूडेंट्स में उतारे। आज हमारे स्टूडेंट्स लड़ते बहुत हैं, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर हसद आ जाता है, हमारे स्टूडेंट्स गिबत करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की बदगुमानी करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ग्रुपबाजी करते हैं, हमारे स्टूडेंट दुश्मनियों पर उतारते हैं, हमारे स्टूडेंट्स मारपीट करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स निकलने के बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बदअमनी का सबब बन जाते हैं, रोडों पर बदअमनी का सबब बन जाते हैं। मैं 100% नहीं कहता, लेकिन ऐसा भी है। अगर हमारे स्टूडेंट्स की अखलाक की तरबियत होगी, किरदार की तरबियत होगी, तो ये जो माफिया जो नशा लेकर मेरे तालीमी इदारों में आकर मेरे नौजवानों को नशे का आदी बनाता है, अगर मेरे टीचर ने इन स्टूडेंट्स की इस तरह तरबियत कर दी तो कोई भी मेरे स्टूडेंट को नशा नहीं करवा सकता। 70% इंटॉक्सिकेंट नशा हमारे तालीमी इदारों के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। यह आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में जाकर जो भी इसके जो अथॉरिटीज हैं टीचर, मेरे सबसे डिस्कशन हुई हैं, स्टूडेंट से भी डिस्कशन हुई हैं, वो भी मुझे मिले जिन्होंने कहा है कि हमारे इदारे में, हमारी यूनिवर्सिटी में हम नशा नहीं आने देते, उन्होंने से रूल बना लिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो रूल भी बन सकता है, काम भी हो सकता है, और स्टूडेंट्स में अल्लाह ने चाहा तो ऐसी खूबसूरती पैदा हो सकती है कि मेरे रब की रहमत शामिल हाल हुई तो वो ये नशा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आप अगर कोशिश करें, मेरे टीचर्स अगर कोशिश करें, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्पेशली जो टीचर्स या सेकेंडरी के जो स्पेशली टीचर्स हैं, अगर वो हमारे स्टूडेंट्स का ये माइंड बना दें कि खौफे खुदा क्या है, इश्के रसूल क्या है, इश्के सहाबा क्या है, इश्के अहले बैत क्या है, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, नमाज क्या है। यानी मुझे ये बात इसलिए इतनी पसंद है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ता था तो मेरे फिजिक्स के टीचर हमें नमाज की तालीम दिया करते थे, इस्लामियत के टीचर नहीं, फिजिक्स के टीचर जो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे, उनसे हमने नमाज की बातें सुनते थे, उनसे इस्लाम और दीन की बातें सुनते थे, कि वो भी नमाजी थे, उनके पेशानी पर नमाज का निशान था, और वो इतनी इश्क और मोहब्बत की बातें करते थे बंदा आशश कर उठे। पढ़ाते फिजिक्स थे लेकिन तरबियत करते थे अपने स्टूडेंट्स की, जस्ट सब्जेक्ट पढ़ाने पर ध्यान नहीं था हमारे। बे आपको उन उस्तादों की बात नहीं कर रहा जिनसे हमने इल्मे दीन की किताबें पढ़ी है, मैं अभी आपको उनसे बातें नहीं कर रहा, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के टीचर्स का इज्तम है ना। मैं तो आपको उन टीचर्स की एग्जांपल दे रहा हूं जिनसे हमने स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ा है, मैं आपको उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आज हमें वो याद है, हम उनको कोट कर रहे हैं। आज मैं इतने बड़े इज्तम के अंदर हमारे टीचर्स को कोट करता हूं कि वो कितने खूबसूरत टीचर्स थे कि हमें उस क्लास के अंदर पढ़ाते पढ़ाते दीन समझा देते थे, इस्लाम की खूबसूरती समझा देते, इश्के रसूल की बातें करते थे, मोहब्बत रसूल की बातें करते थे। अगर के इस्लामियात के भी टीचर थे, लेकिन दीगर टीचर्स की भी मैं आपको बात कर रहा हूं, ईमानदारी की बातें करते थे। हमारे अकाउंट्स के टीचर थे, मैं आई थिंक मैं सेकेंड ईयर की बात, क्योंकि मैं मैट्रिक के बाद कॉमर्स में चला गया था, हम अकाउंटिंग के टीचर हमें याद है, अकाउंटिंग के टीचर इतने मेरे प्यारे एक टीचर थे कि वो मुझे मेरे मोटरसाइकिल कहते थे चलो नमाज के लिए, मैं इनको मोटरसाइकिल बिठाकर मगरिब की नमाज के लिए ले जाता था जब हम कोचिंग पढ़ा करते थे, कोचिंग के स्तर थे हमारे इतने प्यारे। और एक और कोचिंग सेंटर के इधर, उनके बाद मैं अकाउंटिंग पढ़ता था, अकाउंट्स के टीचर थे, जब नमाज का वक्त होता था सारे स्टूडेंट्स को मस्जिद में नमाज के लिए भेजा करते थे, वो खुद भी नमाज के लिए जाया करते। आज उनको हम एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं मैं, टीचर इज्तिमा के अंदर अकाउंट्स के टीचर्स को इस तरह दीगर टीचर्स को मैं कोट कर रहा हूं, आप भी कोट किए जाएंगे, आप भी रेफरेंस के तौर पर बयान किए जाएंगे कि जब कल आपका कोई स्टूडेंट मुबल्लिग के दावत इस्लामी का ऐलान कर रहा होगा तो वो भी कहेंगे कि हमारी फला कॉलेज फला स्कूल फला यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते थे जिन्होंने हमारे रगो पे के अंदर कूट कूट के रिश्के रसूल भरा है, मोहब्बत रसूल भरी है, फैजान साहब और अहले बैत हमें वो दिया करते थे, खुद भी नमाज पढ़ते थे, हमें नमाज के लिए ले जाया करते थे। और मैं आपको दोबारा बता दूं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे फैमिलीज के बच्चे इस्लाम और दीन को पसंद करते हैं, और जब टीचर इस तरह की बातें करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी बातें सुनी जाती हैं, इनकी बातें समझी जाती हैं। हमें वो उस्ताद भी याद हैं जो नरमी प्यार और मोहब्बत से सिखाया करते थे, हमें वो उस्ताद भी याद है जो हमारे हाथ पर बेलन तोड़ा करते थे। तो दोनों को याद करने के नजरिए अलग अलग है। हाँ, बेलन भी टूटे हैं, यानी डंडियां भी टूटी हैं, स्टिक भी टूटी हैं, और किसी ने नरमी प्यार और मोहब्बत के साथ ऐसा अंदाज इख्तियार किया, आज भी वो याद आते हैं। तो अल्लाह पाक हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत और आपके हुस्न अखलाक पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर किसी से कोई भूल हो जाती तो उसको शोहरत ना दी जाती, यानी उसकी गलती को छुपा दिया जाता था। खड़े आप, अब जो सबके बीच में बिचारे की जो पोस्टमार्टम होगा ना, फिर हम कहते हैं यार स्टूडेंट क्यों हमसे बुक्स रखते हैं, क्यों हमसे नफरत करते हैं। जहां शरण आ जाए तो जरूरत हो एक अलग है, मगर उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये आका की सीरत पर अमल करेगा तो इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पहल फरमाया करते, बच्चों को भी सलाम फरमाया करते थे। अल्लाह करे मेरे टीचर्स में और मेरे उस्तादों में याद आ जाए, मदीना मदीना हो जाए, जाते हुए खुद ही अपने स्टूडेंट्स को सलाम करें, सलाम पूरा करें। सलामुअलैकुम बेटा, सलामुअलैकुम बेटा। क्लास में आने के बाद उमूमन टीचर सलाम करते हैं, सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है, सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, सलामुअलैकुम। को बॉडी नहीं बनता, को मायना ही नहीं बनती अगर मैंने गलत बॉडी यूज किया। लेकिन अब सलाम के बारे में गौर करें, क्या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी अदा अता की है कि जब मुसलमान से मिले तो उसको सलाम कहो, यानी सलाम को आम करो, और जो सलाम में पहल करेगा उसको अल्लाह ताला तकबुर से बचाता है। अस्सलामु अलैकुम बोलने कोई मसला नहीं है, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आप क्लास में आए अपने स्टूडेंट्स को, माशाल्लाह हम मुसलमान, हमारे मोस्ट स्टूडेंट मुसलमान ही है, मुसलमान मुसलमान को सलाम करता है, और मुसलमान को सलाम करना चाहिए और पूरा सलाम करें। और अगर यकीन माना, अब ये अगर क्लास में आकर कर दें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो स्टूडेंट भी उम्मीद है, आप कहें इनको बेटा रिप्लाई करो, जवाब दो, तो वो आपको कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हो सके तो एक बार व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखा दें कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ऐसे कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ऐसे कहते हैं। ये हमारी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत हुसन है इस्लाम का, कि जब हम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बजाय हम सबको सलामती, रहमत और बरकत की दुआ देते हैं। हम दीन में भी सलामती, रहमत और बरकत की दुआ देते हैं, जब मिले हम सबको सलामती, रहमत और बरकत की दुआ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला ना लेते, बुराई का बदला बुराई से देने के बजाय माँ फरमा दिया करते थे। ये आपस में भी बदकिस्मती के साथ हो जाता है, इदारे में जब टीचर्स काम करते हैं आपस में भी चीजें हो जाती है, कहना सुनना हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में और हम में भी हो जाता है, स्टूडेंट्स में और हम में भी हो जाता है। एक टीचर पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने कहा कि चलो बेटा आज वो टेस्ट देते हैं। अब स्टूडेंट ने कहा सर आपने नोटिस ही नहीं किया था टेस्ट का, पहले एक दो दिन पहले बताते थे। कोई नहीं बेटा, टेस्ट ले रहे थे, क्या आ रहा है, चलें कॉपीज निकालें, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। तो एक स्टूडेंट ने अड़ी कर दी कि सर आपने कहा नहीं, आप टेस्ट कैसे ले सकते हैं, मैं कह रहा हूं ना कॉपी निकालो। सर अब कैसे टेस्ट ले सकते हैं, आपने आपको टेस्ट देना ही नहीं देना, खड़े हो जाओ निकल जाओ। तो क्यों निकल जाओ, मैं क्लास से नहीं निकलता, मैं क्लास, आपने पहले कहा ही नहीं था कि टेस्ट लेना है, और आप ऐसे ही बैठे खाली खाली आप प्रेशर दे रहे, अब नहीं हम टेस्ट देना चाहते, बदतमीजी मत करो, निकलो। वो टीचर और स्टूडेंट में लड़ाई हो गई और बात चली गई डीन के पास, जो या डीन के पास या प्रिंसिपल के पास, किसी एक के पास। तो स्टूडेंट ने डेफिनेटली बड़ी बदतमीजी की थी, तो स्टूडेंट को तो उसी वक्त इदारे से फारिग कर दिया गया। अब स्टूडेंट तो फारिग हो गए, अब क्लास में जब भी टीचर जाते हैं तो सारे स्टूडेंट देखते हैं ये वही टीचर है जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट की स्कूल से निकल गया। तो वो जो आपस में जो एक ताल्लुक था ना वो टूट गया, खराब हो गया। तो टीचर के साथ अब अपनाइयत स्टूडेंट्स की नहीं रही। अब वो जब भी आता क्लास उसको लगता मैं गैरों के बीच में आ गया हूं, एक वो टूट गया था वो जो बीच में एक ताल्लुक था, तो टीचर ने भी रिजाइन कर दिया कि यार दूसरे टीचर आए थे। ऐसा ही एग्जाम्पल दूसरे, अब हो सकता है कि ये फर्जी बात हो सकता है दुरुस्त हो, मैंने किताब में ये पढ़ा है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, अपने तौर पर नहीं बयान कर रहा। और इस तरह की बातें बाद वक्त एग्जाम्पल के तौर पर फर्जी तौर पर भी लिखी जाती हैं, मगर बातों में रियलिटी हकीकत बहुत होती है समझने के लिए। एक और टीचर का पॉइंट हुआ, वो आए उसने भी एक दिन कह दिया कि चलें टेस्ट, तो एक स्टूडेंट उसका अड़ गया, सर टेस्ट तो नहीं हो सकता, क्या ले लेते क्या हाल है, पढ़ लेते टेस्ट ले लेते, कहा नहीं सर आपने मना किया, अच्छा चले ठीक है, चले जो टेस्ट नहीं देना चाहते ना दे, जो देना चाहते दे दे, नहीं सर हम टेस्ट नहीं देंगे, बेटा आप नहीं दे मैं कहां बोला बेटा आप टेस्ट दें, आप नहीं दे कोई आपको मैं फेल भी नहीं कर रहा, जो देना चाहते हैं उनको तो बेटा आप नहीं दे रोकेंगे, सर आप बेटा आप, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना आप बेटा नहीं दो भाई ये टेस्ट नहीं देंगे, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है कौन कौन टेस्ट देना चाहता है, सर हम दे देंगे, टेस्ट दे दिया। अब जब टेस्ट शुरू हुआ थोड़ी देर के बाद लड़के ने भी कॉपी निकाली और टेस्ट देना शुरू कर दिया। हे फलाह और कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है, नादानी में डूब सकती ही नहीं मौजों की तुगियानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगेबानी में, नरमी से काम हो जाते हैं। मैं यकीन दिलाऊं आपको अल्लाह पाक हमें नरमी अता फरमाए और अपने स्टूडेंट्स की अखलाकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। यानी डॉक्टर्स को पता होता है कि आजकल कौन सा वायरस चल रहा है, राइट और रॉन्ग, खांसते भी तो बता देता है कि लगता है तुमको ये वायरस है, और फी जमाना एक मेडिकल का अच्छा डॉक्टर इस बात की मालूमात रखता है कि मरीज कौन कौन से हैं, किस किस किस्म का मर्ज बढ़ रहा है, उसकी जी स्टडी भी करते हैं, दोबारा उसको पढ़ते भी हैं कि आजकल एक नई रिसर्च क्या आ गई है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर और बड़े मतलब मैच्योर डॉक्टर नई नई स्टडीज के साथ अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक टीचर को पता होना चाहिए कि इस सोसाइटी के इश्यूज क्या हैं, स्टूडेंट्स के इश्यूज क्या हैं, आखिर इसके अंदर इतना एग्रेशन क्यों है, आखिर ये इतना बोल्ड क्यों है, यानी बोल्ड से बड़ा बदतमीजी है, आखिर ये बदअखलाकी क्यों करता है, आखिर क्या बात है कि बच्चियों की इज्जतें नहीं बचती, क्या बात है कि किसी का मारपीट में पड़ जाते हैं, क्या बात है घर में माँ बाप की इताअत नहीं करते, फर्मा बदारी नहीं करते, इनके अंदर वो टॉलरेंट ही नहीं है, इनके अंदर वो सब्र और बर्दाश्त ही नहीं है, सड़क पर खड़े होकर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के इतने इश्यूज हैं, इतने इश्यूज अखलाकी तौर पर, बदकारी के तौर पर, बद किरदारी के तौर पर स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं। मेरी तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज इन इश्यूज को एक जगह पर लिखें और हम देखें और इनका हल क्या है ये देखें। आपकी क्लास के अंदर ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जिनमें इनमें से एक दो तीन या चंद या ज्यादा ये प्रॉब्लम होगा, और हमारा काम यह है कि सोसाइटी को ऐसा स्टूडेंट देना, ऐसा फर्द देना कि जो अल्लाह की रहमत से दीन पर भी अमल करता हो और सोसाइटी में उसका किरदार बहुत अच्छा हो। दारुल मदीना जो इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है हमारी बेसिक ही है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं तो दावत इस्लामिक के एक मुबल्लिग की हैसियत से अर्ज कर रहा हूं, तो खुद दावत इस्लामिक स्कूल रन कर रही है, हमारे अपने स्कूल्स हैं, हमने इस पर स्टडी की है, हमने इसके कैरिकुलम पर स्टडी की है, स्टूडेंट्स की साइकी पर स्टडी की है, अपने असातिज़ा और अपने टीचर्स को जो फीमेल है फीमेल टीचर्स हैं इनके वर्कशॉप किए, इनकी तरबियत के सिलसिले किए हैं, इन्हें बताया है, इनका एक गोल है कि आपको हमें ये प्रोडक्ट देनी है। हमारे दारुल मदीना की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, जो दावत इस्लामी के स्कूल हैं, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम इंग्लिश मीडियम ही है और फैजान इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम, ये दोनों के मैं आपको बात कर रहा हूँ। इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम अलग है, ऑनलाइन कोर्सेस अलग हैं, दुनिया के कमोबेश 80 कंट्रीज से अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 20,000 स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन दीन सीख रहे हैं, दीन की बातें सीख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेल फीमेल अलग अलग हैं, और मैं तो आपको भी दावत देता हूं, जितने भी मेरे टीचर्स और जो भी सुनने देखने वाले जमा है, आप ये ऑनलाइन एडमिशन लें और आप एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट्स को देखें कि जो कुरान पढ़ने आया नहीं आया। मैं तो लाइव बयान करता हूं लेकिन हाथ तो मेरी टारगेट ऑडियंस मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और अपने शोबे का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया और इतनी कोशिश की और इतनी जगहों पर टीचर्स को जमा किया कि जिन तक मैं एक बात पहुंचाने की मुझे तौफीक अल्लाह नसीब करे और मैं आप तक बात पहुंचाऊं कि हमारे पास 25-30 साल 20 25 साल स्टूडेंट पढ़ता है, निकलता है, उसको देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता, उसको अपने कपड़े पाक करने नहीं आते, उसे खुद को पाक करने नहीं आता, उसे नमाज के शराइत नमाज के फराइज नहीं पता होते, वो इस्लामी अखलाकियात से दूर होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे टीचर इस्लामी भाइयों, मैं तमाम मेल फीमेल टीचर से बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूं, मैं कुरान और हदीस पर से मोहब्बत करने वालों से बात कर रहा हूं, कुरान पर ईमान लाने वालों से बात कर रहा हूं, कि हमें चाहिए कि हम ऐसे स्टूडेंट दें कि जो माशरे में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको कुरान पढ़ने आए, इनको इबादत करने आए, इनको नेकी करने आए। हमारे यहां अजीब मामला है कि जब बच्चा प्रोफेसर या किसी बहुत बड़ा प्रोफेशनल बन जाता है तो माँ बाप उससे डरते हैं, मगर जब बच्चा आलिम मर जाता है तो वो माँ बाप से डरना शुरू कर देता है। कितना फर्क है, माँ बाप से वो डरता है कि मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाएं। मेरा लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट जमा हुए थे ना, जो लाहौर काना 9 में बयान हुआ था, मैंने उसे पेरेंट्स से बयान किया था, आपको याद होगा सोबान भाई, मैंने सिर्फ पेरेंट्स से बयान किया था कि आप अपने पेरेंट्स को भूल गए। मुझे याद है, मैं भूल नहीं रहा हूं, तो मुझे याद है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट थे, फूट फूट कर रो रहे थे, माँ बाप को याद करके रो रहे थे अपने, सिर्फ इनको एहसास दिलाने की बात थी कि आप अपने माँ बाप को भूल गए। आप हॉस्टल में चले गए, आपको माँ बाप याद नहीं आते, अब माँ बाप को फोन नहीं करते। आज हमारे यहां पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे पेरेंट्स का अदब नहीं कर रहे, इनके एहतराम नहीं कर रहे, क्योंकि वो बातें पेरेंट्स के ताल्लुक से जो दीनी मदारिस में दीनी माहौल में सिखाई जाती है, अनफॉर्चुनेट वो हमारे तालीमी इदारों में लैक कर रही है और इसकी जरूरत है। और आप एज ए टीचर समझते हैं, आपके बच्चे भी तो स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, आप भी तो वालिद हैं, बच्चा घर पर आकर क्या आपके आपके हाथ चूमता है? मदरसतुल मदीना का बच्चा जाता है अपने माँ बाप के हाथ चूमता है, दारुल मदीना का बच्चा जाता है माँ बाप के हाथ चूमता है, जामतुल मदीना का बच्चा जाता है माँ बाप के हाथ चूमता है? अगर आपके यहाँ ऐसा है, क्योंकि 100% तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हम तो कह ही नहीं सकते कि किसी भी तालीम इदारे में ऐसा है ही नहीं, जहां है मुबारक हो उनको, वो टीचर जो ऐसा करते मुबारक हो उनको, जो स्टूडेंट्स की ऐसी तरबियत करते मुबारक है उन टीचर्स को, जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत कुरान और हदीस के मुताबिक तरबियत करते हैं और उन्हें ये बात हदीस याद रहती है कि मैं एक टीचर हूं, मैं मौलिम हूं और मेरे आका अल्लाह के आखिरी नबी मौलिम बनाकर भेजे गए, मैं नबी पाक की सीरत पर अमल करते हुए अपने इस प्रोफेशन को अदा करूंगा, मैं खुद भी सुन्नत पर अमल करूंगा, खुद भी अपने किरदार को बेहतर करूंगा और मुझे देखकर इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट भी अपने किरदार को बेहतर करेंगे। आज अगर हम अपने स्टूडेंट में ये पैदा, मैं अथॉरिटी में नाम नहीं लेना चाहता, मैं अथॉरिटीज से मिला, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज से मिला, मेरे हाथ में सीरत मुस्तफ़ा किताब मैं अपने साथ ले गया था, मैंने कहा कि हम जो स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं, इस सोसाइटी को जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उन्हें सीरत मुस्तफ़ा नहीं सिखाई जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके लिए पहले हमारे टीचर्स के कोर्सेज करवाए जाएं सीरत मुस्तफ़ा किताब पर। यह अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की बड़ी खूबसूरत किताब है, मकतबुल मदीना में मिलती है, सीरत मुस्तफ़ा, हम लें और उसको पढ़ें, अमल करें, स्टूडेंट तक पहुंचाएं, इंशाल्लाह ताला आप देखिए किस कदर हमारे स्टूडेंट्स दुनिया और आखिरत की इनको अल्लाह ने चाहे तो भलाइयां नसीब होंगी। और आप खुद हमारे लिए, क्या मेरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का टीचर ये नहीं सोच सकता कि मैं वो काम करके दुनिया से जाऊं जो मेरे लिए सदका जारिया हो? दावत इस्लामी तो हम सबकी है और आज आपको जमा किया गया है कि हम ये बातें समझें और हम अपने प्रोफेशन को एंड इस्लाम दीन के मुताबिक रह गए, जहां जहां हमारी जितनी ड्यूटी है जिसकी हम सैलरीज लेते हैं उसको पूरा करें, ताकि बददियानती वाला मामला हमारे अंदर ना आ रहे, बेईमानी हमारे में ना आए, धोखा हमारे में ना आए, ये सारी चीजें हमें इससे भी खुद को बचाना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकला के करीमा को इख्तियार करना है। माशाल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका में नरमी थी, अब हशाश बशाश रहते थे, मुस्कुराते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराहट मेरे आका के चेहरे मुबारक पर रहा करती थी। और मेरे आका जब मुस्कुराते थे तबस्सुम फरमाते थे, आपके दांतों के अगले दांतों की खिड़कियों से नूर की किरणें निकला करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के तबस्सुम के क्या कहने, और हशाश बशाश थे। ये नहीं हो सकता था कि आका की सोबत में रहकर कोई उकता जाए, आका सिखाते थे, समझाते थे, तरबियत फरमाते थे, लेकिन नरमी प्यार मोहब्बत آقا کے انداز کے تو پھر کیا کہنے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، میں کہہ دوں آپ کو، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اعلیٰ تر لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلّا کہوں تجھے۔ کہلے کی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بے نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب کیا کیا بیان کریں کہ زندگیاں ختم ہوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ انتہائی حیا فرمانے والے تھے، انتہائی حیا فرمانے والے تھے، آپ کی حیا کے تو ایک سے ایک واقعات ہیں۔ اللہ وہ دین لائے کہ ہم سب اس حیا والی ادا کو اختیار کرنے والے بن جائیں، حیا ہمارے اسٹوڈینٹ میں، ٹیچرس میں حیا، فیمیل اسٹوڈینٹس میں حیا، خیال، پردہ، شریعت کی پاسداری، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب حیا میں آ جائے گا۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کے اخلاق کریمہ کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں، اللہ نے چاہا اگر اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، نیت کریں گے، تو ہمارا کردار بھی بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھنے والوں کا، ہمارے قریب رہنے والوں کا، فیملی کا، اسٹوڈنٹس کا، سب کا کردار بھی اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ آپ اس کے لیے میری درخواست ہے آپ سب سے، خود بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لائیں۔ میری تمام ٹیچر سے درخواست ہے، کائنڈلی پلیز آپ بھی اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں لے کر چلیں، مل کر انشاءاللہ معاشرے کو بہتر بنائیں گے، مل کر انشاءاللہ معاشرے کی خرابیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک کتاب آپ کے لیے ہم نے رکھی ہے ٹیچرز کے لیے اسپیشلی طور پر، میں چاہوں گا وہ کتاب بھی ضرور لیجئے گا، یہ کتاب دیکھ لیجئے، آخری نبی کی پیاری سیرت۔ ایک ٹیچر نے اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹ کو پوچھا تھا، یہ اس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ٹیچر نے اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹ کو پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بتائیں جو آپ کو بہت پیاری تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، چار بیٹیاں تھیں، چار میں سے آپ بہت پیاری تھیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یقین مانے نہ مانے، پوری کلاس کے اندر، کالج کی کلاس تھی، پوری کلاس میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں تھا جسے یہ نام پتا ہو، انہوں نے جو نام بتایا ان میں بعض نام تو ازواج کے تھے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی باتیں کرنے والے اور کہنے والے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پتہ نہیں، آپ کی بچیوں کے نام پتہ نہیں، آپ کو پسند کیا تھا، کھانا کیا پسند تھا، پینے میں کیا پسند تھا، آپ کے دیگر زندگی کے انداز مبارک کیا تھے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر ایک مختصر سی کتاب مرتب کی گئی جس کا نام رکھا گیا آخری نبی کی پیاری سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 ایئرس جو آپ نے 63 سال دنیا کو قبول فرمایا، اس کا انتہائی مختصر سا بیان ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی الحمدللہ آ چکا ہے، تو یہ ضرور لیجئے گا، آپ کو ہم انگلش یہ دیکھیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھی لگے گی، ہے نا، یہ ضرور لیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ پاک آپ پر اور آپ کے گھر بار پہ خصوصی رحمت و فضل و کرم فرمائے، اور ہمارے بیان میں جو غلطیاں کوتا ہو یہ معاف فرمائے، اور ہمارے بیان میں جو بہتری ہے جو خوبی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں.